नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप मंगलाचरण उच्चारण कर सकते पेज नंबर एक से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे। हरे कृष्णा तो हमने चर्चा की थी पिछले सत्र में भगवत तत्व या विष्णु तत्व के बारे में, और ये समझ लिया था कि किस प्रकार से कृष्ण ही परम पुरुष है, हमारी आंखों से ओझल है, इनविजिबल है, लेकिन सबके पीछे कौन है, सूत्र के रूप में कृष्ण है। इसलिए गीता के सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, पेज नंबर 246 में भगवान कहते हैं कि ये जो चराचर जगत है, एक तो मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है, और दूसरा मैं वास्तव में क्या हूं, सर्वश्रेष्ठ सत्य हूं। जैसे भगवान कहते हैं पेज नंबर 246, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्त परतरम नान्यत् मुझसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। जिस प्रकार से मोती धागे में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो हमें मोती की माला जब देखते हैं तो मोती नजर आते हैं, लेकिन उसके अंदर वो सारे किस पर आश्रित हैं, धागे के ऊपर। तो वो धागा निकाला जाए तो बाकी उस माला का कोई अस्तित्व नहीं है एक प्रकार से। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं इस संसार में मुझसे कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ परम सत्य हूँ। और ऐसे परम सत्य की स्थापना अर्जुन ने भी की, जैसे हमने पिछली बार सुना, और फिर शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, और कैसे अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं। तो हमने और क्या चर्चा की थी, कृष्ण ही परम पुरुष हैं, भगवान के छह ऐश्वर्यों की चर्चा की थी, किस प्रकार से भगवान के जो छह ऐश्वर्य हैं जिनका वर्णन अलग अलग शास्त्रों में आता है, विशेष रूप से विष्णु पुराण में पराशर मुनि उसका वर्णन करते हैं। तो भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं, तो भागवतम इसलिए कहता है एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण परम भगवान है, और जितने भी उनके विस्तार हैं, अलग अलग अवतार हैं, वो क्या है, उनके अंश और कला है। तो उसके लिए हमने एक उदाहरण सुना था, कौन सा था वो, चंद्रमा का। चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है? एक ही है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे चंद्रमा हैं, एक ही चंद्रमा है लेकिन अलग अलग कलाएं वो प्रकट करता है। और चंद्रमा के जो पूर्णता है वो पूर्णिमा के दिन फुल मून दिखाई देता है, तो उसकी तुलना कृष्ण से की गई है। और ये चंद्रमा इन दिन एक बार तो हमारे आंखों से पूर्ण रूप से क्या होता है, ओझल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अमावस्या। तो क्या है कि चंद्रमा अप्रकट हो गया हमारे आंखों से, लेकिन चंद्रमा का अस्तित्व है लेकिन हमारे आंखों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान भी इस जगत में प्रकट होते हैं, प्रकट होकर अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, और फिर एक समय आता है जब भगवान इस जगत से अप्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ये घोषणा करते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी केवल एकमात्र शरण ग्रहण करो। लेकिन हम डरे रहते, विशेष रूप से भारत में हम कई जो देवी देवता हैं उनको भी क्या सोचते, ये भी भगवान है, क्या है, भगवान है, सूर्य भगवान बोलते कि नहीं, सब सूर्य भगवान, गणेश भगवान, और कौन से भगवान, दुर्गा माता और शिवजी भगवान, तो कितने सारे भगवान हैं। प्रभुपाद कहा करते थे ये भारत जो है भगवान बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि विदेशों में उस समय क्या था, कोई ना कोई इंडियन स्वामी बाबा जी जाता था और वो कहता था कि मैं क्या हूँ, भगवान हूँ, और आप सबको भी भगवान बना दूंगा। तो प्रभुपाद कहा करते थे ऐसा कैसा भगवान जिसके दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। तो एक बार हमारे एक सन्यासी प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में एक हॉल में, और एक चिल्लाते हुए उठा कि मैं भगवान हूं। तो इन्होंने कहा कि वो स्वीकार ही नहीं कर रहा था, उसने कहा मैं ही भगवान हूं। तो भक्तों ने क्या किया, सारे दरवाजे बंद कर दिए रूम के, हॉल के, छोटे से हॉल के। काफी समय बीता, वो कहता है मुझे पेट मेरा दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है। तो भक्त कहेंगे खोलेंगे ही नहीं दरवाजा, पहले ये स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने ये सारे चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो किस चीज का भगवान। हाँ, तो बाद में व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझे टॉयलेट जाने दो। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान, हम सोचते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, या किसी की भी पूजा करेंगे, विशेष रूप से भारत में सब की गति एक है। आजकल साईं बाबा भी भगवान है कि नहीं, साईं बाबा को भी भगवान स्वीकार करते, दुर्गा जी है, गणेश जी है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, फिर कितने सारे देवी देवता हैं। तो जब ये सब चीजों को हम सोचते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो अध्यात्म के नाम पर भागना चाहते हैं, वो कहते हैं अरे जिसकी मर्जी पूजा कर लो, सारे क्या है, एक ही भगवान है। अभी हमारे बॉडी में कितने होल है, 9, गीता कहते हैं नव द्वारे पूरे देही, 9 गेट्स है इस बॉडी में। प्रभुपाद कहा करते थे कि हर एक गेट का अपना अपना फंक्शन है, तो आपको भोजन करना है तो कान से डालोगे या आंख से डालोगे तो जाएगा क्या, नहीं, एक प्रॉपर जो होल है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जहां हमारा मत है उसी प्रकार से पथ नहीं हो सकता कि सारे रास्ते एक ही ओर जा रहे हैं। हम अपने भौतिक जीवन में मुंबई जाना है तो हम कोई कलकत्ता का टिकट थोड़ी लेते हैं, कहाँ का लेते हैं, मुंबई का ही लेते हैं। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो हम क्या करते हैं, भागते हैं, इन चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय के 25वां श्लोक पेज नंबर 318, पेज नंबर, यान्ति देव व्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि माम। भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो यतो मत ततो पत नहीं है कि सारे रास्ते एक और नहीं जा रहे हैं। भूत प्रेत की पूजा करते हो तो भूत प्रेत ही बनना पड़ेगा आपको। पितरों को पूछते तो पितरों के लोक में जन्म ग्रहण कर सकते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं ये सारे भगवान हैं, गणेश भगवान, दुर्गा भगवान, शिवजी भगवान और इंद्र भगवान, तो ये भगवान नहीं है। कई बार ये शब्द यूज किया जाता है। सोचो कोई गांव से कोई व्यक्ति आपका आया है मित्र, और आप फैक्ट्री में काम करते हो, तो मित्र आता है और आप चाहते हो कि उसको मिलाओ अलग अलग लोगों से, तो आपका जो सुपरवाइजर है वो उससे मिलवाते हैं और आप कहते हो ना ये मेरा बॉस है, इमीडिएट बॉस होता है ना। फिर थोड़ी देर के बाद मैनेजर के पास जाते हो और तभी भी क्या कहते हो आप, ये मेरा बॉस है। लेकिन जब बाहर निकलते हो देखते हैं कि कंपनी का ओनर गाड़ी से उतर रहा है, तभी क्या कहते हैं, ये मेरा बॉस है। अभी ये जो गांव से आया हुआ व्यक्ति, हाँ ये तो कन्फ्यूजन, कितने बॉस है, सारे बॉस समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बॉस कौन है, एक ही है जो गाड़ी से उतरा था। तो इस प्रकार से हम भी जो लोग हैं वो कहते हैं गणेश भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है, हाँ कितने सारे भगवान है, लेकिन भगवान कितने हैं, एक है। तो भगवान कौन है, कैसे है, क्यों है, उसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें अपनी आंखें बंद किए हुए किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ इसलिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। पशुओं के पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्रों से ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये देवी देवता वास्तव में कौन है, जो भगवान ऐसे ऐसे जीवात्माओं को चूज करते हैं जो ये यूनिवर्सल मैनेजिंग अफेयर मैनेज करने के लिए भगवान इन देवताओं को नियुक्त करते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट उनको देते हैं। जैसे आपकी यहाँ मिनिस्ट्रीज है ना, अलग अलग मिनिस्टर है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, तो उसी प्रकार से अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग मिनिस्ट्री है। हाँ किसी के पास वाटर मिनिस्ट्री है, पानी का संचालन कौन करते हैं, इंद्र करते हैं, वायु है, हाँ ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। तो ऐसे देवताओं की पूजा कौन करते हैं, यदि कोई पूछे तो गीता में कृष्ण कहते हैं, हाँ पेज नंबर 259 सातवें अध्याय का 20वां श्लोक, भगवान कहते कामस्तृतज्ञानापद्यन्यदेवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्यानियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, भौतिक इच्छाएं के द्वारा जिनकी बुद्धि वास्तव में खत्म हो गई है, जिनको कुछ और सूझ नहीं रहा है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भौतिक कल्मश के कारण जिनकी बुद्धि मारी गई है, भौतिक कामनाओं से जिनकी बुद्धि बहुत भर गई है, ऐसे लोग उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कहाँ जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। और इसलिए देखो सारे देवताओं के पास अलग अलग, ये जो आसुर लोग अधिकतर जाते हैं, हाँ जितने भी रावण थे, हिरण्यकश्यपु, और कौन से उदाहरण हो सकते, भस्मासुर, अत्यधिक जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अधिकतर देवताओं की उपासना करते हैं और उनसे वर प्राप्त करते हैं। कांक्षतः कर्मणा सिद्धि यजंता इह देवता, तीसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलते हैं, इस कारण से वो उनके पास जाता है। लेकिन उनसे प्राप्त होने वाले भी जितने लाभ है वो कैसे है, क्षणिक है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, हाँ पेज नंबर 262 सातवें अध्याय का 23वां श्लोक, उसी के दो पेज आगे भगवान कहते हैं अंतवंत अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेदसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां, इसमें दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है अल्प मेधा और दूसरा है अंतवंतु। तो जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवता भी जीवात्माएं हैं। तो कृष्ण के द्वारा जो प्राप्त होने वाले फल हैं, वो वास्तव में शाश्वत हैं। तो ऐसे देवता भी इस भौतिक जगत में प्रिजनर हैं, क्या कहेंगे, कैदी हैं। लेकिन कैसे कैदी हैं? फर्स्ट क्लास के कैदी हैं। अलग अलग कैटेगरी के कैदी होते हैं ना। कोई पॉलिटिशियन कुछ करता है तो उसके लिए अलग सेल होता है, जिसमें टेलीविजन भी होता है, टेबल चेयर भी होती है, बेड भी होता है। लेकिन जो बहुत खूंखार कैदी है उसके लिए अलग अलग सेल होता है। तो इस प्रकार से ये देवतागण भी वास्तव में इस जगत के कैदी हैं, इस जगत के जीव हैं, जो खुद ही बद्ध हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, एक प्रकार से अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, वो देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं उनकी जो उपासना है वो अविधि पूर्वकम है, विधि युक्त नहीं है। कोई कहता है देवताओं की उपासना करके भगवान की उपासना हो जाएगी, नहीं, शास्त्र उसके लिए मना करते हैं। इसी कारण से भगवान गीता के आखिरी अध्यायों में, हाँ, जो आखिरी श्लोक है ना, 18वें अध्याय का 66, जो बारंबार हम उच्चारण करते हैं, 553, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने ये नहीं बोला सर्वधर्मान परित्यज माम अनेकम शरणम व्रज, बोला है क्या? अनेकम नहीं बोला, क्या बोला? एकम। द्वितीय भी नहीं बोला, भगवान ने कहा माम एकम। इसलिए भगवान, शुरुआत के श्लोक हमने जो देखा, भगवान कहते मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे सर्वश्रेष्ठ ऐसा परम सत्य नहीं है या ट्रूथ नहीं है। और यहाँ भी वो कहते कि सर्वधर्मान परित्यज, सारे ये भौतिक धर्म है, देवी देवताओं की उपासना आदि भी है, उनका त्याग करके केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, अरे घर में तो शिव जी भी है और मैं साईं बाबा के पास भी जाती हूँ, या फिर यहाँ भी जाती हूँ वहां भी जाता हूँ, तो छोड़ने से कुछ डर लगता है, क्या लगता है? डर रहता है हमें। तो भगवान अगले लाइन में क्या कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष इच्छामि मा शुच, मा शुच मत, डरो मत, चिंता मत करो, कदम उठाओ। हमारे अंदर डर होता है कि अरे दुर्गा देवी त्रिशूल के पीछे तो नहीं लगेगी, शिवजी भस्म कर डालेंगे, फिर गणेश जी का क्या होगा, लड्डू खाने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम डरे रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये देवी देवता अत्यधिक आनंदित होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके परम स्वामी की सेवा में जीवात्माएं लगे हैं। दुर्गा देवी कहते हैं कि उस व्यक्ति का मैं उस व्यक्ति को नष्ट कर डालूंगी जो व्यक्ति मेरे परम स्वामी कृष्ण की सेवा में नहीं लगता। इसी कारण से दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है, तीन शूल, त्रिशूल है ना, तो वो क्या है, तीन प्रकार के कष्ट है, हमेशा सारे जीवों को पीड़ित करती है, दंडित करती है, जब तक वो किसकी शरण ग्रहण नहीं करता, कृष्ण की शरण। तो दुर्गा देवी इस जगत की जेलर है वास्तव में। इसी कारण से भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे जो देवी देवता हैं, उनकी शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त मेरे सेवक है। तो ये देवी देवता भी आनंदित हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगता है। इसी कारण से हमें ये जानना चाहिए कि ये देवी देवता भी अल्टीमेटली क्या है, एक जीव है, लेकिन उनके पास एक पद भगवान ने दिया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इंद्र भी एक पोजीशन है, इंद्र का मतलब होता है किंग, अभी जो इंद्र है उसका नाम क्या है, पुरंदर। तो उस प्रकार से अलग अलग जो डेमिगॉड्स हैं उनका वो पद है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद है लेकिन कोई और व्यक्ति वहां बैठता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग ये पोजीशंस हैं, लेकिन वहां क्वालिफाइड जीव को भगवान सेवा में नियुक्त करते हैं। इसी कारण से कृष्ण कहते हैं कि क्या करो, मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो। तो इस प्रकार से देवता वास्तव में भगवान के ही सेवक हैं। तो हमने उस दिन चर्चा की थी विष्णु तत्व या भगवत तत्व की, तो आज अभी चर्चा करेंगे भगवान जो शिव जी हैं जिनके बारे में, इनको कहा जाता है शंभु तत्व। तो शिव जी ये माया के एक प्रकार के नियंता हैं, और शिव जी की जो भार्या कौन है, दुर्गा देवी है। तो जो दुर्गा देवी है वो इस भौतिक जगत की कंट्रोलर है, जेलर है, लेकिन ये दोनों भी क्या नहीं है, जीव तत्व नहीं है। तो शिव जी के बारे में एक वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी कहते क्षीरम यथी दधि, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, कि जो शिव जी है वो ना जीव है ना भगवान विष्णु या कृष्ण है, भगवत तत्व भी नहीं है। तो शिव जी का एक अलग ही तत्व है जिसे कहते हैं शंभु तत्व। तो शंभु तत्व वो है जिस प्रकार से शास्त्र कहते कि दूध से दही बनता है, दूध से जो दही बनता है वो कौन है, शिव जी है। इस प्रकार से शिव जी ये भगवान के महान भक्त हैं। इसी कारण से भागवतम में वर्णन आता है कि भागवतम कहता है निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वो कहते हैं नीचे की ओर बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है, देवों में या भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार से वैष्णवानाम यथा शंभु, विष्णु के भक्त या कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो कौन है, शिवजी हैं, या महादेव शिवजी हैं। इसी कारण से शिवजी सदैव भगवान का स्मरण करते हैं और वो सदैव उनके गले में सांप होते हैं, इस संकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शिवजी सदैव भगवान राम के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। एक बार शिवजी को पार्वती ने पूछा देवताओं के साथ आपका क्या संबंध है, तो शिवजी कहते देवताएं उपासनीय हैं लेकिन भजनीय नहीं है, भजन करने योग्य सेवा करने योग्य कोई है तो वो कृष्ण है। तो इस प्रकार से शिवजी इस चीज का वर्णन करते हैं। तो शिवजी भगवान उनको नियुक्त करते हैं अपनी विशेष सेवा के लिए, संहार आदि की सेवा उनको प्रदान करते हैं। तो जनरली हम सुनते हैं कि एक बार इंडिया में एक जर्मन फिलोसोफर आया, अलग अलग टेंपल्स को विजिट कर रहा था, तो उसने वो एक टेंपल में गया जहाँ दुर्गा देवी किसके ऊपर बैठी हुई थी, सिम्हा के ऊपर, देखा कि इसके हाथ में तो इतने सारे शस्त्र अस्त्र हैं। उनको लगा, सब पुजारी कहते कि भगवान है, क्योंकि मंदिर का मतलब भगवान, लोग कहते ना मंदिर में वह भगवान निवास कर रहे हैं। तो दुर्गा देवी के टेंपल में वो गया तो वो देखा कि इतने सारे शस्त्रास्त्र लेकर अपनी तैयारी में है, ये भगवान नहीं हो सकती। तो इसलिए वो आगे किसी और टेंपल में जाते हैं तो वहां शिव जी को भी देखा, शिव जी ऐसे अपने मुद्रा में बैठे हैं और किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये भी भगवान नहीं हो सकते। तो पूर्णता की ओर जब वो आगे जा रहे थे, भगवान राम के टेंपल गए, अलग अलग टेंपल्स जाकर फाइनली कहां पहुंचे, राधा कृष्ण का जो टेंपल है, जहां राधा कृष्ण को देखा, विशेष रूप से कृष्ण को, तो उन्होंने कहा ये हो सकते भगवान, भगवान में जो कुछ करते नहीं है, केवल क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। उन्होंने देखा बांसुरी हाथ में लिए हुए है, राधा रानी ऐसी मुद्रा में है पुष्प हाथ में लेकर, और वो मस्त है एक प्रकार से। तो वो जर्मन फिलोसोफर भी अपने छोटी सी भौतिक बुद्धि से भी ये समझ पाया कि कृष्ण कौन है, भगवान है, लेकिन भारत में भगवान भगवान को समझना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, शास्त्र के माध्यम से नहीं समझते हैं, शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा समझना सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से शिवजी भी भगवान के एक सेवक के रूप में हैं, और आगे जैसे हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा है, कौन कौन से वो विषय हैं, 5 सब्जेक्ट्स, भगवान, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो हमने भगवान की चर्चा की थी, अभी जीव की चर्चा करते हैं। जीव की चर्चा उस दिन भी हमने की थी आत्मा के बारे में। हाँ, तो जीव तत्व, तो ये तत्व का मतलब क्या है कि जो ट्रूथ है या सत्य है, ऐसा सत्य जिसे नकारा नहीं जा सकता, उसको वास्तव में तत्व कहते हैं। इसी कारण से जो जीव है, जिसका वर्णन भगवान गीता के 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में करते हैं, पेज नंबर 244 में, भगवान जब अपने भौतिक प्रकृति का वर्णन करते 4वें श्लोक में, तो 5वें श्लोक में वो कहते अपरेय मितस्त्वान्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो एदम धारेते जगत। तो भगवान कहते हैं मेरी एक पराशक्ति है। एक तो उन्होंने अपराशक्ति का वर्णन किया, लेकिन पराशक्ति जो भगवान वो कहते हैं वो जीव शक्ति है। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान की कई सारी शक्तियां हैं, उनमें से ये भी एक शक्ति है। हाँ, जीव को भी भगवान की पराशक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, और जिसकी चर्चा हमने आत्मा के रूप में की थी। तो ये जो जीव शक्ति है या जीव है, वो उसको कहा जाता है तटस्था शक्ति। कौन सी शक्ति? तटस्था शक्ति। हाँ, तट का मतलब है एक ओर जल है और समंदर है, और दूसरे ओर तट है और आप बीच में हो। तो उसी प्रकार से जो जीव है वो हमेशा बीच में है, तट पर है। वो निर्णय ले सकता है जल में जाना है या तट पर वॉक करना है। तो वो उसके पास माइन्यूट थोड़ी सी स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके चूज कर सकता है। भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। उनको सबको भक्त बनवाना है, फोर्सफुली आपसे खुद से प्रेम करवाना है, तो उनको एक मिनट नहीं लगेगा, सारे जो उनके ओर भागते चले आएंगे। लेकिन क्या है, फिर हम जीव नहीं कहलाएंगे। हाँ, तो इसी कारण से भगवान थोड़ी सी हमें स्वतंत्रता देते हैं, और वो स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके हम भगवान की ओर जा सकते हैं या माया की ओर जा सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है, भगवान कभी फोर्स नहीं करते। तो जब हम सोचे है कि माया की ओर जाना है, तो फिर हमें कहाँ घुसना पड़ेगा? 84 लाख योनियों में। एक बार वो गलती कर दी, माया की ओर उन्मुख हो गया, तो वो जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही वो सोच सकता है। भगवान की ये विशेष कृपा है हमारे ऊपर। क्या है ये? मनुष्य शरीर उन्होंने दिया है, ये सबसे बड़ी कृपा है, जिसके द्वारा हम वास्तव में भगवान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो जीव के पास वो स्वतंत्रता है, जिसके द्वारा वो निश्चित कर सकता है कि मुझे भगवान की ओर जाना है या माया की ओर जाना है। इसी कारण से उसे तटस्था शक्ति कहते हैं। और गीता में दूसरे शक्ति का वर्णन आया है, जिसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति, हाँ, जो इसी अध्याय का जो 4वां श्लोक है, 7वां चैप्टर, हाँ, श्लोक नंबर 4, जिसको हमने कई बार दोहराया था। भगवान कहते हैं भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, भिन्ना मीन्स भौतिक प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार के 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। तो ये अपरा प्रकृति है। एक है परा प्रकृति जो आध्यात्मिक है, और एक है ये बहिरंगा प्रकृति। जैसे मैंने कहा था, ये बहिरंगा प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है दुर्गा देवी। दुर्गा का मतलब है दूर, मीन्स बहुत कठिन है, और गा मीन्स गमन करना, जहां से जाना अत्यंत कठिन है उसको दुर्गा कहा गया है। इसी कारण से इस भौतिक जगत को भी दुर्ग कहते हैं या किला कहते हैं, कि जिससे निकलना एक जीव के लिए बहुत ही कठिन है। तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हमारे समझ में आने के लिए उनके अलग अलग विभाग किए गए हैं। एक तो भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति, और फिर भगवान कहते मेरी दूसरी शक्ति है वो कौन सी है जिसे कहते हैं अंतरंगा शक्ति, कौन सी शक्ति, अंतरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व राधा रानी करती है। भगवान के लिए सारी शक्तियां एक है, जैसे बिजली घर में जो व्यक्ति है उसके पास तो एक ही है वो शक्ति बिजली, लेकिन जब हमारे घरों में वो आती है इलेक्ट्रिसिटी तो अलग अलग चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग के लिए और हॉट करने के लिए, तो दो शक्तियां हमें महसूस होती हैं, लेकिन ओरिजिनली क्या है, एक ही शक्ति है। तो भगवान के लिए है एक ही शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो कौन सी है, श्रीमती राधा रानी। इसी कारण से महात्मा व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में भक्ति करता है, और माया के अधीन जीव भगवान की जो बहिरंगा प्रकृति है उसके अधीन होकर इस भौतिक संसार के चीजों का दोहन करके सुख के लिए भ्रमण करता है ना 84 लाख योनियों में। तो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में पेज नंबर 310 अपने अंतरंगा शक्ति के बारे में, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवे प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवे प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान की जो दैवी प्रकृति है उनके अधीन जो भक्तगण है वो रहकर भगवत भक्ति करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से सूर्य से उसकी जो किरणें हैं या ताप है प्रकाश है उसको अलग नहीं किया जा सकता, या आत्मा से उसकी चेतना को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जो शक्तिमान है उसकी जो शक्ति है उससे अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भगवान की ये विशेष दिव्यता है। फिर और एक विषय जो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं वो प्रकृति है। तो प्रकृति का वर्णन कृष्ण करते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, अभी अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि ये मेरी भौतिक प्रकृति है, और ये भौतिक प्रकृति विशेष रूप से 24 तत्वों से बनी हुई है, ये शरीर भी 24 तत्वों से बना है, तो पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो भी 24 तत्वों से ही बनाया गया है, शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये हमेशा परिवर्तनशील है, आध्यात्मिक प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए गीता के 8वें अध्याय के 4वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, पेज नंबर 274, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष छादि दैवतम अधि योग्य हमेवात्र देह देह भृतांवर। हे देहधारी में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं भौतिक प्रकृति क्या है, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हम अपने शरीर से ही देखो, अपने शरीर में ये शरीर भौतिक प्रकृति की देन है, और ये भौतिक प्रकृति प्रकृति के 8 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इसमें कितने परिवर्तन हो रहे हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परिवर्तन है। इस भौतिक जगत में भी कई प्रकार के परिवर्तन हमें नजर आते हैं। तो कोई व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति में ही निवास करना चाहता है या सुख की अनुभूति करना चाहता है तो वो असंभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कई लोग इस संसार का उपभोग करने के लिए स्वर्ग लोक चले जाते हैं। पेज नंबर 316 में कृष्ण कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग इस, वो भी एक भौतिक प्रकृति का भाग है, सारे जो 14 लोक हैं, पृथ्वी से ऊपर और 6 लोक हैं और नीचे 7 हैं, तो ये सारे जो लोक हैं वो भी भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हैं। इसलिए कृष्ण कहते तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्ते लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते। इस प्रकार जब ये उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो मतलब भौतिक प्रकृति में आप जहां मर्जी जाओ आपको वापस इस बद्ध जगत में ही निवास करना पड़ेगा, फिर से कष्टों का ही सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो चाहे हम ब्रह्मलोक चले जाएं या पाताल चले जाएं, लेकिन इस भौतिक जगत में सदैव बद्ध अवस्था में रहेंगे, क्योंकि इस जगत की स्थिति क्या है, अनित्य है, अशाश्वत है। इसलिए कृष्ण कहते अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं दो चीजों को देखो इस भौतिक प्रकृति के, क्या है वो दो चीजें, पेज नंबर 327 में कृष्ण कहते हैं, उसी के आगे आप जाएंगे। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तता, 33 नंबर श्लोक नवे अध्याय का। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या आता, इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है भौतिक प्रकृति है ये वास्तव में अनित्य है और यहाँ का जो सुख है वो भी क्या है, शाश्वत नहीं है। और ये भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक जो प्रकृति है भगवान की परा प्रकृति उसका प्रतिबिंब है। इसलिए कृष्णा कहते हैं 15वें अध्याय के पहले श्लोक में, पेज नंबर मुझे याद नहीं लेकिन 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 1 और 2 में कृष्ण कहते हैं, तो इसकी तुलना इस एनालॉजी से देते हैं। ऊर्ध्व मूलम अध शाक अश्वत्तम प्रावरव्ययम। तो आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में सारी चीजें उल्टी नजर आती हैं। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति भी है, वहां पेज नंबर 465 वहां जो प्रेम है वो इस संसार में किसमें परिवर्तित हो गया है, काम में परिवर्तित हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत्र है, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान इस वटवृक्ष का उदाहरण देते हैं इससे समझने के लिए कि आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है लेकिन विकृत प्रतिबिंब है। वहां नित्य सुख है तो यह हमेशा क्या है, दुख है। वहां प्रेम की भावना है तो यहाँ काम या लस्ट की भावना है। तो हर चीज विपरीत या विकृत रूप में इस जगत में है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी भौतिक प्रकृति है ये वास्तव में क्या है, शाश्वत नहीं है। और दूसरी जो प्रकृति है भगवान वर्णन करते हैं परा प्रकृति। कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में, पेज नंबर 286 में भगवान की जो आध्यात्मिक प्रकृति है परा प्रकृति का वर्णन करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है। तो इस भौतिक संसार में हम जहां भी जाए तो भौतिक जगत में फिर से सड़ने के लिए या दुख अनुभूत करने के लिए वापस आना पड़ता है। चाहे स्वर्ग लोक जाओ ब्रह्म लोक जाओ, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं ब्रह्म लोक में भी जाओगे तो इस संसार में आकर पुनः जन्म लेना होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरा जो दिव्य प्रकृति है परम धाम है परा प्रकृति, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने से फिर से इस जगत में व्यक्ति आता नहीं है और उसको क्या कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है। क्या कहते हैं, वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब जहां किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। तो ऐसे वैकुंठ में भी भगवान को जो सर्वश्रेष्ठ धाम है वो कौन सा है, गोलोक वृंदावन है। तो ऐसे गोलोक वृंदावन जो सर्व ऊपर सर्वोपरि धाम है, हाँ उसके नीचे वैकुंठ आदि प्लैनेट्स देखे जाते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि वहां जाए तो वहाँ बिजली आदि की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? पहले तो हम इंडिया मतलब भारत में भी कहाँ ट्रैवल करते हैं तो पहले अपना होटल बुक कर देंगे, सारी सिचुएशन पहले ही जान लेते हैं, वेदर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, जाने से पहले नेट्स पर पढ़ते कि नहीं? तो लेकिन भगवान ने वो सारी डिटेल्स अपने शास्त्रों में दी है। भगवान गीता के 15वें अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं, पेज नंबर 470, भगवान कहते हैं 6 श्लोक में 15वें अध्याय के, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो इस प्रकार से भगवान इस बात को स्थापित करते हैं कि क्या करो, मेरी जो ये आध्यात्मिक प्रकृति है उसकी ओर जाने का प्रयास करो, उसको समझने का प्रयास करो। आध्यात्मिक प्रकृति में इस भगवान का धाम, वही भगवान का धाम इस भौतिक जगत में आता है तो उसे भौम वृंदावन कहते हैं। जो वृंदावन यहाँ है मथुरा के पास, वो कौन सा है? भौम वृंदावन है। कोई व्यक्ति कहे है कि सारे जो वहां जाए तो वहां सबके लिए स्थान होगा, हाँ तो शास्त्र कहते हैं कि वो क्या है, वहां काल और स्पेस का कोई प्रभाव नहीं है या गुणों का प्रभाव नहीं है, वो असीमित है भगवान का जो धाम है। और वहां का जीवन कैसे है, ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं वहां कोई व्यक्ति बोलता है तो वो गाने के समान है, यथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, वहां चलना भी नाचने के समान है। तो भगवान कहते हैं ऐसा मेरा सुंदर धाम है और भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि उस धाम में व्यक्ति वापस आ जाए। इसी कारण से उसी धाम को भगवान अपने साथ लेके आते हैं वृंदावन के रूप में, और उस वृंदावन को यदि कोई देखता है तो भगवान के आध्यात्मिक धाम को देख सकता है। इसलिए वृंदावन जो धाम इस भौतिक जगत में, उसको आध्यात्मिक धाम की विंडो कही जाती है। जैसे आप एक चश्मे से कितना बड़ा एरिया देख सकते हो कि नहीं, पूरे सागर सारी चीजों को देखते हो। तो उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं भगवान का जो वृंदावन धाम अभी अवेलेबल है वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत की साक्षात आध्यात्मिक जगत है, लेकिन उसको देखने के लिए भी किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है। और वो विशेष योग्यता क्या है? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन न, कि हमारे आंखों में प्रेम का अंजन होना चाहिए। अभी कौन सा अंजन लगाया हमने? काम का अंजन, लस्ट। जहां भी हम देखते हैं हमें एंजॉय करने की भावना ही दिखाई देती है, लेकिन जब हम प्रेम का अंजन लगाते हैं तभी वास्तव में भगवान के जो धाम है, जहां भगवान कहते न सूर्य न चंद्रमा की आवश्यकता है, वो दिखाई दे सकता है या उसको समझ सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो भगवान कहते हैं क्यों, क्योंकि सारे जीवों के ऊपर तीन गुणों का प्रभाव है। कितने गुणों का? तीन गुणों का, जिसका वर्णन गीता के दूसरे 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं त्रिभिर् गुणमयैर् भावि, पेज नंबर 250, तो भगवान कहते हैं त्रिभिर् गुणमयैर् भाविर् एवि सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभि जानाति मामे भ्य परम अव्ययम्। तीन गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो हम इस भौतिक संसार में बंद गए हैं। किस चीज से बंद गए हैं? इन तीन गुणों के कारण। और इन तीन गुणों से ही व्यक्ति सदैव प्रभावित रहता है, और हमारा जो जीवन है हमेशा इन तीन गुणों के प्रभाव में है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, जिसका वर्णन भगवान 14वें अध्याय में करते हैं। 14वें अध्याय भगवद गीता का अध्याय है, जिसमें पूर्ण रूपेण भगवान इन तीनों गुणों का बहुत विशद वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं किस प्रकार से जो ये तीन गुण हैं जीव को बांधते हैं। अब देखेंगे 5वां श्लोक 14वें अध्याय का, पेज नंबर 449, सत्वम रजस्तमयति गुणा प्रकृति संभवा निबद नान्ति महाबाहो देह देहिनम अव्ययम्। हे महाबाहो अर्जुन, जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो नेचुरली इन तीनों गुणों के द्वारा बंधा जाता है। तो कैसे कैसे बंधता है तो आगे के श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 6449 पेज नंबर। तो सत्वगुण किस प्रकार से एक जीव को बांध देता है, तो भगवान कहते हैं कि इन तीन गुणों में हमेशा स्पर्धा चली रहती है, चलती है। कभी हम सत्वगुण में होते हैं तो थोड़ी देर के बाद रजोगुण हावी हो जाता है, फिर कभी तमोगुण हावी हो जाता है, फिर सत्वगुण में आते हैं, तो पूरे दिन में सारे कार्यकलापों पर इन तीन गुणों का प्रभाव होता है। तो सत्वगुण कैसे बांधता है या सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण एक प्रकार से कैसे है, तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 6 में उसका अनुवाद पढ़ता हूं, पेज नंबर 450 में। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। ऐसे लोगों को भी आप कुछ कहो भगवान के बारे में तो कहते नहीं नहीं, हम क्या, हम जानते हैं, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, हम बचपन से ही इन सब चीजों को जानते हैं। और दूसरा ये भी, जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो भौतिक सुख के कारण एक प्रकार से बंध जाता है। और रजोगुण क्या है, अगला जो श्लोक है 7 नंबर, भगवान कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा असंगम उद्भवम तन्य बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहदारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण से व्यक्ति बंधता है जिसमें असीम भौतिक भोग करने की इच्छा और अत्यधिक काम वासना, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति तीव्र आकर्षण, ये जो भावनाएं क्या है, रजोगुण का प्रतिनिधित्व है। इसलिए कृष्ण कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि, और ये रजोगुण ही हमें प्रेरित करता है किस चीज के लिए, पाप करने के लिए। इसलिए भगवान को अर्जुन जब पूछते हैं कि मैं जानता हूं ये उचित नहीं है, फिर भी मैं क्या करता हूं, उस पाप कार्य में लगता हूं, तो भगवान अर्जुन को बताते हैं क्यों ये होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, भगवान कहते हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न जो काम है जिसके कारण व्यक्ति के पास पता है उसे कि ये उचित नहीं है, फिर भी वो पाप कर्म में लिप्त होता है, क्योंकि रजोगुण के कारण रजोगुण हावी होता है। रजोगुण में व्यक्ति पागल की तरह अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए दिन रात दौड़ते रहता है, मेहनत करता है, हमेशा उसका मन और हृदय चंचल और विचलित रहता है। इसी कारण से भगवान कहते हैं ऐसा जो रजोगुण है वो क्या करता है, व्यक्ति को बांधता है और उसी में और भौतिक इच्छाएं ईंधन का काम करती है। जैसे सोचो फायर है, फायर में और हम घी डाले तो क्या होगी, फायर और बढ़ेगी। तो वैसे ही और भौतिक इच्छाओं के कारण ये रजोगुण अत्यधिक वृद्धि करता है और ये एक्टिविटीज को जनरेट करता है। रजोगुणी व्यक्ति ही कभी शांत नहीं बैठ सकता, अत्यधिक चंचल होता है, दिन रात भौतिक कार्यों में लगा रहता है केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए। वो सोचता है सुख की प्राप्ति तो केवल धन अर्जन से होगी, और धन आएगा तो उसका सुख कैसे मिलेगा, भोग करने के लिए। तो अगला जो तीसरा गुण है जिसको कृष्ण कहते हैं तमोगुण, 8वां जो श्लोक है, भगवान कहते हैं हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहदारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा निंद है जो बद्ध जीव को बांधती है। निद्रा, आलस, ये तमोगुण का लक्षण है। अधिक से अधिक नींद 6 घंटा इनफ है मनुष्य शरीर के लिए, लेकिन भी कोई व्यक्ति भालू की तरह सोना चाहता है तो अगले जन्म में क्या बनेगा, भालू ही बनेगा। इसी कारण से आजकल ये जैसे रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, लेकिन निशाचर जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं रात्रि के 11 बजे से 2 बजे तक क्या होते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं भूत पिशाच आदि। तो वैसे ही भूत पिशाच अभी कौन है, कॉल सेंटर के लोग हैं। अब कॉल सेंटर नहीं है, वो क्या है, कॉल सेंटर है। काल उनका वास्तव में काल आ गया है। तो ऐसे कॉल सेंटर में काम करते लोग निशाचर के भांति, और जब 7-8 साल काम करते तो हजारों बीमारियों से वो घिर जाते हैं। तो एक तमोगुण का है, एक प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि लक्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो तमोगुण है उससे भी ऊपर उठना चाहिए। कभी भी हमारे लिए रजोगुण और तमोगुण उचित नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय का जो 45 श्लोक है, पेज नंबर 90, जहां भगवान हमें ऊपर उठने के लिए कहते हैं। भगवान कहते कि उठो, अर्जुन को कहते हैं, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 45, पेज नंबर 90, भगवान कहते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, हे अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो। भगवान कहते हैं इन 3 गुणों से ऊपर उठो। तो इन 3 गुणों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है, तो कृष्ण 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पेज नंबर 462, पेज नंबर 462 14वें अध्याय का 26वां, भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान इस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं कि ये 3 गुण ही कारण है बारंबार अलग अलग शरीरों में जन्म लेने के लिए। इसी कारण से वो कहते हैं इन 3 गुणों का संग हमें नहीं करना है, इन 3 गुणों से परे शुद्ध सत्व है उसकी हमें कामना करनी है। इसी कारण से भगवान कहते हैं पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृतिर जान गुणान कारणम गुण संघर्ष सद असद योनि जन्मसु। तो ये गीता का 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं कि यही कारण है, ये 3 गुण ही कारण है हमें बारंबार अलग अलग शरीरों में जन्म ग्रहण करने के लिए। तो इन 3 गुणों के ऊपर भगवान ने पूरा एक अध्याय दिया है। तो आपको समय मिलता है, समय हमारे पास नहीं है, तो आपके लिए होमवर्क है, आप जब घर जाएंगे तो गीता का ये जो अध्याय है 14 प्रकृति के जो 3 गुण है उसका कम से कम आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं जहां भगवान वर्णन करते हैं, और मैं गुणों की 2-3 चीजें पढ़ता हूं फिर हम यहां विराम देते हैं। तो भगवान अलग अलग भोजन का वर्णन करते हैं, पेज नंबर 509, कि अलग अलग गुणों में अलग अलग आहार किस प्रकार का होता है। तो सारी चीजें इन 3 गुणों में बटी हुई हैं। जैसे भगवान कहते टाइम भी 3 गुणों में है, सुबह का समय सत्वगुण है, 9 बजे के बाद रजोगुण है, 5 बजे के बाद तमोगुण है, लेकिन इनसे परे कौन सा, इन 3 गुणों से परे कौन सा गुण है, शुद्ध सत्व है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो ये 3 गुणों में नहीं आता, हाँ ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए प्रभुपाद या आचार्य गण कहते हैं कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। 4:10 से लेकर 4:58 का ये जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त है, और ये बहुत पावरफुल समय है जो इन 3 गुणों में नहीं आता है। इसी कारण से वर्ल्ड वाइड सारे इस्कॉन टेम्पल्स में सुबह सुबह 4 भक्त उठते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हाँ, यहाँ आहार का भी वर्णन करते हैं कि तीन प्रकार का भोजन किस प्रकार से है। तो जस्ट मैं इसको पढ़ता हूँ, पेज नंबर 509 श्लोक नंबर 8। सत्वगुणी व्यक्ति को कौन सा आहार प्रिय है? जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति है, 17वें अध्याय का 9वां श्लोक अगला, वो रजोगुणी व्यक्तियों को कौन सा भोजन प्रिय है? अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो भगवान अगले श्लोक में कहते तमोगुणी व्यक्तियों के भोजन के बारे में, वो कहते खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होता है। तो इसी 17वें अध्याय के उसी के आगे श्लोकों में भगवान ने अलग अलग चीजें भी बताई है कि अलग अलग प्रकार का सत्वगुणी दान रजोगुणी तमोगुणी तपस्या का वर्णन किया है। तीन गुणों में कैसी तपस्याएं हैं, 3 गुणों में कैसे यज्ञ हैं। तो उन श्लोकों को आप खुद ही सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। 3 गुणों में अलग अलग मंत्र भी 3 गुणों में होते हैं, सत्वगुणी मंत्र तामसिक मंत्र रजोगुणी मंत्र। लेकिन इन 3 गुणों से परे मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए 3 गुणों से परे भी एक आहार है, और वो कौन सा आहार है? प्रसादम। तो इसलिए हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो उसके लिए कृष्ण कहते हैं क्या करो, भगवत भजन में लगो। तो फिर हम कल आने वाले दिनों में हम जो रिमेनिंग चर्चा है वो कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, तो लाउडली एक बार बोले सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा, सभी धन्यवाद करेंगे उत्साह से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।